हरे कृष्णा। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 3 कर्मयोग श्लोक क्रमांक 15। कर्म ब्रह्मोद्भवम् विद्धि ब्रह्माक्षर समुद्भवम् तस्मात् सर्वगतम् ब्रह्म नित्यम् यज्ञे प्रतिष्ठितम्। वेदों में नियमित कर्मों का विधान है और ये वेद साक्षात श्री भगवान परब्रह्म से प्रकट हुए हैं। फलतः सर्वव्यापी ब्रह्म यज्ञ कर्मों में सदा स्थित रहता है। एक चीज तो हमें समझ में आना चाहिए, वेदों में नियमित कर्मों का विधान है। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र को क्या कार्य करना चाहिए ये वेदों में बताया गया है, और इन कर्मों को जब भगवान की प्रसन्नता के लिए किया जाता है तो फिर वो यज्ञ कहलाते हैं। वेद साक्षात श्री भगवान से प्रकट हुए हैं, इस कारण से वेदों को प्रमाणित करने के लिए हमें किसी और प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। ऐसा नहीं है कि हम ये कहें कि अरे देखिए जो वेदों में बातें हैं वो साइंटिस्ट भी उसको सही मान रहे हैं। साइंटिस्ट सही माने या ना माने, वेद उनके उनके प्रमाण की, उनके अनुमोदन की अपेक्षा नहीं रखता। और भगवान इन यज्ञ कर्मों में स्थित है, इसका अर्थ है कि इन यज्ञ कर्मों के द्वारा हम भगवान की प्राप्ति कर सकते हैं। तात्पर्य को देखिए, इस श्लोक में यज्ञार्थ कर्म अर्थात कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए कर्म की आवश्यकता को भली भांति विवेचित किया गया है। मतलब यज्ञ कर्म क्यों करने चाहिए, इस बात को श्लोक में समझाया जा रहा है। यदि हमें यज्ञ पुरुष विष्णु के परितोष के लिए यानी कि संतुष्टि के लिए कर्म करना है तो हमें ब्रह्म या दिव्य वेदों से कर्म की दीक्षा प्राप्त करनी होगी। यानी कि हमें वेदों से सीखना होगा कि हमें कार्य कैसे करना चाहिए, भगवान को हम किस प्रकार से प्रसन्न करें, ये हमको वेदों से सीखना चाहिए। अतः सारे वेद कर्मादेशों की संहिताएं हैं। कर्मादेशों की संहिताएं का अर्थ है वो बताते हैं कि किस व्यक्ति को क्या कार्य करना चाहिए और क्या कार्य नहीं करना चाहिए, क्या नियम है। जैसे अभी मैंने पोस्ट किया था कि प्याज लहसुन नहीं खाना चाहिए, तो ये सब मनु संहिता में बताया गया है। हम इसमें अपना तर्क नहीं लगा सकते कि ये तो आयुर्वेदिक मेडिसिन के रूप में कार्य करता है तो इसे हम खा सकते हैं, नहीं। वेदों में ये निषेध है तो हमें नहीं करना है। वेदों के निर्देश के बिना किया गया कोई भी कर्म विकर्म या अवैध अथवा पापपूर्ण कर्म कहलाता है। अतः कर्मफल से बचने के लिए सदैव वेदों से निर्देश प्राप्त करना चाहिए। जैसे आप समझ सकते हैं कि अगर अपनी गाड़ी को आप दाईं तरफ चलाएंगे तो ये गलत है और इससे आपका चालान हो जाएगा, उसी प्रकार से वेदों से निर्देश प्राप्त करके व्यक्ति को अपना जीवन यापन करना चाहिए जिससे वो कर्मफल से बच जाए। जिस प्रकार सामान्य जीवन में राज्य के निर्देश के अंतर्गत कार्य करना होता है उसी प्रकार भगवान के परम राज्य के निर्देशन में कार्य करना चाहिए। अभी मैंने इस बात को समझा दिया। वेदों में ऐसे निर्देश भगवान के श्वास से प्रत्यक्ष प्रकट होते हैं। कहा गया है अस्य महतो भूतस्य निश्वसितम् एतद् यद् ऋग्वेदो यजुर्वेदः सामवेदो अथर्वांगीरसः। चारों वेद ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद तथा अथर्ववेद भगवान के शास्त्र से उद्भूत है। अब कोई तर्क कर सकता है कि अरे भाई सांस से कौन श्लोक वेद लिख सकता है, पुस्तक तो हाथ से लिखी जाती है। यही हमको वेद की जो प्रामाणिकता है इस पर हमें विश्वास करना चाहिए। हमारी छोटी सी बुद्धि से हम नहीं समझ सकते कि भगवान श्वास प्रश्वास सांस छोड़ने के द्वारा वेदों को प्रकट कैसे कर सकते हैं, लेकिन हमको वेदों की प्रामाणिकता को ऐसे ही स्वीकार करना पड़ेगा। अचिंत ये खलु भावा नतम स्तर्के नियोजते। जो चीज अचिंत है, हमारी बुद्धि के परे है, उसको तर्क से नहीं समझा जा सकता। जो हम नहीं कर सकते इसका अर्थ ये नहीं है कि भगवान भी इस बात को नहीं कर सकते। ब्रह्म संहिता में भी बताया गया है अंगान यस्य सकलेन्द्रिय वृत्ति मान्ति। भगवान के सारे अंग उनके दूसरे अंगों का कार्य करने में पूरी तरह से सक्षम है। तो यहाँ बृहद आरण्य के उपनिषद जो कि वेदों का ही भाग है इसमें बताया गया है, इसलिए एक बुद्धिमान व्यक्ति इसको स्वीकार करता है। ब्रह्म संहिता से प्रमाणित होता है कि सर्वशक्तिमान होने के कारण भगवान अपने श्वास के द्वारा बोल सकते हैं, अपनी प्रत्येक इंद्रिय के द्वारा अन्य समस्त इंद्रियों के कार्य संपन्न कर सकते हैं। दूसरे शब्द में भगवान अपने निश्वास के द्वारा बोल सकते हैं और वे अपने नेत्रों से गर्भाधान कर सकते हैं। तो यानी कि ये बात अपने को समझनी चाहिए वेदों के आधार पर, वेदों के प्रमाण से, कि भगवान एक विशिष्ट व्यक्ति हैं और उनके पास अचिंत गुण और अचिंत शक्ति हैं, जिसके द्वारा ये बहुत सारे वो अचिंत कार्य कर सकते हैं, जैसे उन्होंने यहाँ पे किया, वेदों को अपने श्वास से प्रस्तुत किया। वस्तुतः यह कहा जाता है कि उन्होंने प्रकृति पर दृष्टिपात किया और समस्त जीवों को गर्भस्थ किया। इस प्रकार प्रकृति के गर्भ में बद्ध जीवों को प्रविष्ट करने के पश्चात उन्होंने उन्हें वैदिक ज्ञान के रूप में आदेश दिया, जिससे वे भगवत धाम वापस जा सकें। अगर भगवान सृष्टि न करें या फिर प्रलय के बाद जो होता है, जीवात्मा सब भगवान के शरीर में निवास करने लगती हैं सुप्तावस्था में। तो भगवान चाहते हैं कि जीवात्मा उनके पास लौटे, उनसे प्रेममय संबंध स्थापित करें, इसीलिए भौतिक जगत की सृष्टि करते हैं, जिसमें जीवात्मा को भोग का मौका भी मिलता है, जिस इच्छा की वजह से हम इस जगत में आए हैं। और साथ ही साथ ये मौका मिलता है कि हम यज्ञ करना सीखें, भगवान को प्रसन्न करने वाले कार्य करना सीखें, जो कि हमारी स्वरूपगत स्थिति है, और इसके द्वारा हम भगवत धाम जाने के योग्य बन जाते हैं। इसीलिए भगवान ने वेदों में यज्ञ, विभिन्न प्रकार के यज्ञों का आदेश दिया है, जिसके द्वारा धीरे धीरे करके हम उनकी तरफ उन्मुख हो सकें। हमें यह सदैव स्मरण रखना चाहिए कि प्रकृति में सारे बद्ध जीव भौतिक भोग के लिए इच्छुक रहते हैं, किंतु वैदिक आदेश इस प्रकार बनाए गए हैं कि मनुष्य अपनी विकृत इच्छाओं की पूर्ति कर सकता है और तथाकथित सुख भोग पूरा करके भगवान के पास लौट सकता है। बहुत ही सुंदर लाइन है, थोड़ा समझाने का प्रयास करूंगा, ध्यान दीजिएगा। जितनी भी भौतिक जगत में आत्माएं हैं, बद्ध आत्माएं, उनकी एक ही इच्छा है कि हम कैसे अगले क्षण इंद्रिय तृप्ति करें। तो वेद के माध्यम से भगवान ने इस इच्छा को धीरे धीरे शुद्ध करने की प्रक्रिया को प्रस्तुत किया है, जिसमें हमें अपनी इंद्रिय तृप्ति भी मिल जाती है और व्यक्ति धीरे धीरे शुद्ध भी होता है उस इच्छा के कंटैमिनेशन, इस इच्छा के दूषण से भी। जैसे स्त्री संग करने की इच्छा हर बद्धात्मा के हृदय में रहती है, तो इंसानों के लिए विवाह संस्कार का प्रावधान है, जिसके द्वारा व्यक्ति धीरे धीरे इस इच्छा से निवृत्त हो। इसीलिए गृहस्थ जीवन पूरा जीवन करने के लिए नहीं बोला गया है, गृहस्थ जीवन 50 साल तक होना चाहिए और उसके बाद व्यक्ति वानप्रस्थ, जिसमें कोई भी प्रकार का संग नहीं होता है, और उसके बाद अगर वो योग्य है तो संन्यास के लिए जाए। तो यानी कि केवल 100 साल के जीवन में केवल 25% समय भोग की इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए, और वो भी नियमित तरीके से पूर्ण करने के लिए बोला गया है। इसी प्रकार से बहुत सारे विधान हैं, मैंने एक उदाहरण दिया, और हम धीरे धीरे इस प्रकार से प्रक्रिया से को पालन करके धीरे धीरे हमारी शुद्धिकरण होता है। तो दूसरा बात यहाँ बोल रहे हैं, तथा कथित सुख भोग, जैसे यही एग्जाम्पल ले लें, इस जगत पे सबसे बड़ा सुख व्यक्ति को स्त्री संघ के रूप में प्रस्तुत होता है, जिसमें वो सोचता है कि वो सुख प्राप्त कर रहा है। इसके आगे भगवान कई श्लोक बताएंगे, इसमें चर्चा करेंगे। आहार निद्रा भय मैथुन की अगर हम बात करें, तो उसमें हम एक्चुअली खाली सोचते हैं कि हमें सुख प्राप्त हो रहा है। मन एक प्रकार की अनुकूल वृत्ति की तरफ बहने लगता है, उसकी वृत्ति अनुकूल होने लगती है, जिसके कारण वो सोचने लगता है कि हमें सुख मिलता है। अदरवाइज कोई सुख नहीं है भौतिक जगत में। आत्मा भौतिक वस्तुओं का भोग कर ही नहीं सकती है, केवल मन की अनुकूल वृत्ति और मन से अपने आप को पहचान करने के कारण हम इस प्रकार के सुख भोग को सुख मानते हैं, सो कॉल्ड सुख को। इसलिए तथा कथित सुख की बात कर रहे हैं। लेकिन फिर भी अगर उस सुख का भोग करना चाहता है व्यक्ति, तो यज्ञ की प्रक्रिया के द्वारा करे और धीरे धीरे इसके द्वारा अपने हृदय को शुद्ध करे। बद्ध जीवों के लिए मुक्ति प्राप्त करने का यह सुनहरा अवसर होता है, अतः उन्हें चाहिए कि कृष्ण भावना भावित होकर यज्ञ विधि का पालन करें। ये भी इंटरेस्टिंग है कि कृष्ण भावना भावित होने का अर्थ क्या है, यानी डायरेक्टली उन यज्ञों को करें जो भगवान कृष्ण की प्रसन्नता के लिए होते हैं, यथा श्रवण कीर्तन स्मरण वंदन इत्यादि। यानी कि केवल भौतिक यज्ञों पे अपनी आस्था को बनाए रखना ये कोई बहुत बड़ी बुद्धिमानी नहीं है, उससे निश्चित रूप से शुद्धिकरण होता है, लेकिन शुद्धिकरण उतना तेजी से नहीं होता जितना कि सीधे भक्ति की क्रियाओं के द्वारा होता है। नहीं तो विवाह करके सभी लोग तुरंत ही अनासक्त तो क्यों नहीं हो जाते, हम देख रहे हैं कि धीरे 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 करके होता तो है। पहली बात तो यह है कि कलयुग में सब लोग गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास इत्यादि के नियमों का पालन कर नहीं सकते, और इसी कारण से शुद्धिकरण ऐसे भी कम होता है, भोगों में अधिक लग जाता है व्यक्ति। तो इसीलिए बेहतर है कि इन वर्णाश्रम के नियमों का जितना संभव पालन हो करें, लेकिन मुख्य रूप से कृष्ण भावना के नियमों का पालन करें, भगवान की भक्ति में डायरेक्ट रूप से लगें, तो हम बड़ी जल्दी प्रगति कर सकते हैं। यहाँ तक कि जो वैदिक आदेशों का पालन नहीं करते वे भी कृष्ण भावनामृत के सिद्धांत को ग्रहण कर सकते हैं, जिससे वैदिक यज्ञों या कर्मों की पूर्ति हो जाएगी। तो आपने यहाँ पे देखा जो मैं बात कर रहा था कि हम लोग कलयुग में हर प्रकार से जो नियम है वर्णाश्रम के उसका पालन नहीं कर सकते, लेकिन अगर हम भक्ति में संलग्न होते हैं तो भक्ति के माध्यम से हमारा शुद्धिकरण बहुत तीव्र हो जाता है। इस बात को भगवान 8वें अध्याय में बताते हैं, वेदेषु यज्ञेषु तपः सचैव दानेषु यत् पुण्य फलम प्रतिष्ठम अतीत तत्सर्वमदं विदित्वा योगी परम स्थानम उपेति चाद्यम। वेद पढ़ने से, यज्ञ करने से, दान इत्यादि करने से जो भी पुण्य मिलता है एक योगी को मिल जाता है, भक्त को मिल जाता है जो अपनी इंद्रियों को भगवान कृष्ण की सेवा में लगा रहा है, और साथ ही साथ भक्त को भगवान के धाम जाने की योग्यता भी प्राप्त हो जाती है। एवं प्रवर्तितं चक्रं नानुवर्तयतीह यः अघायुरिन्द्रियारामो मोघं पार्थ सजीवति। हे प्रिय अर्जुन, जो मानव जीवन में इस प्रकार वेदों द्वारा स्थापित यज्ञ चक्र का पालन नहीं करता वह निश्चय ही पाप में जीवन व्यतीत करता है। ऐसा व्यक्ति केवल इंद्रियों को तुष्ट की तुष्टि के लिए ही व्यर्थ ही जीवित रहता है। तो ये चक्र है क्या? वेद जो हैं वो भगवान से आते हैं और वेदों से यज्ञ की प्रक्रिया आती है। यज्ञ की प्रक्रिया के द्वारा वर्षा होती है, वर्षा होती है, वर्षा से खाद्य उत्पन्न होते हैं, खाद्य से जीवात्मा को उत्पत्ति होती है। तो आप कहेंगे अरे जीवात्मा तो अजन्मा है, जीवात्मा की उत्पत्ति का होता है अर्थ जो अन्न खाते हैं तो पुरुष के शरीर में वीर की रचना होती है, और फिर वीर जब माँ पत्नी के घर में स्थापित होता है तो फिर जीवात्मा को नया शरीर प्राप्त होता है, और फिर ये जो जीवात्मा है ये वेदों से प्राप्त हुए आदेशों का पालन करके यज्ञ करता है, जिसे वर्षा होती है उससे और जीवात्मा आती है। तो जो इस प्रकार से यज्ञ नहीं करता है वो केवल अघायु यानी कि पापमय जीवन जीता है और उसका जीवन वृथा वेस्ट हो जाता है। जो इस यज्ञ की प्रक्रिया को रोक देता है, छोड़ देता है, उसका वो भगवान के धाम प्राप्ति की नहीं कर पाता, बल्कि उसका जीवन केवल इंद्र तृप्ति में चला जाता है। ठीक है, तात्पर्य देखिए, इस श्लोक में भगवान ने कठोर परिश्रम करो और इंद्र तृप्ति का आनंद लो इस सांसारिक विचारधारा का तिरस्कार किया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लोग बोलते हैं कर्म ही पूजा है, लेकिन एक्चुअली पहले तो ये प्रश्न करना चाहिए कि पूजा है तो किसकी पूजा है? अपनी पूजा तो नहीं कर रहे ना उससे। और दूसरा, कर्म पूजा है अगर आप उस कर्म को भगवान कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं, उनके फल को भगवान कृष्ण को अर्पित कर रहे हैं, और इस प्रक्रिया के लिए हमको यज्ञ का क्षमा कीजिएगा, वेदों का आज्ञा मानना पड़ेगा, वेदों के अनुसार उस क्रिया को करना पड़ेगा और फिर भगवान विष्णु को उसके फल समर्पित करने पड़ेंगे। लेकिन इस प्रकार से केवल परिश्रम करके और इंद्रिय तृप्ति का आनंद लेना, इस प्रकार की विचारधारा वाले व्यक्ति का जीवन व्यर्थ ही व्यर्थ हो जाता है। अतः जो लोग इस संसार में भोग करना चाहते हैं उन्हें उपर्युक्त यज्ञ चक्र का अनुसरण करना परम आवश्यक है। जो ऐसे विधि विधानों का पालन नहीं करता अधिकाधिक तिरस्कृत होने के कारण उसका जीवन अत्यंत संकटपूर्ण रहता है। यानी कि अगर व्यक्ति इस जगत का भोग भी करना चाहता है, और हम सब लोग किंचित ज्यादा या कम मात्रा में इससे प्रभावित हैं, तो उसे कम से कम यज्ञ की विधि का पालन करना चाहिए, जिससे उसकी भोग की जो प्रवृत्ति है वो धीरे धीरे समाप्त हो प्रकृति के। और अगर ऐसा हम नहीं करते हैं तो फिर निश्चित रूप से हमारा जीवन संकटपूर्ण होगा, इस जन्म में भी हमको बहुत कष्ट आएंगे और आगे का जीवन भी हमारा अंधकारमय हो जाएगा। प्रकृति के नियम अनुसार यह मानव शरीर विशेष रूप से आत्म साक्षात्कार के लिए मिला है, जिसे कर्मयोग, ज्ञान योग या भक्ति योग में से किसी एक विधि से प्राप्त किया जा सकता है। इन योनियों के लिए यज्ञ संपन्न करने की कोई आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि ये पाप पुण्य से परे होते हैं। क्षमा कीजिएगा, इन योगियों के लिए, इन योगियों के लिए यज्ञ संपन्न करने की कोई आवश्यकता नहीं रहती क्योंकि वे पाप और पुण्य से परे होते हैं, किंतु जो लोग इंद्र तृप्ति में जुटे हुए हैं उन्हें पूर्वोक्त यज्ञ चक्र के द्वारा शुद्धिकरण की आवश्यकता है। थोड़ा समझ में आना चाहिए, जो लोग आध्यात्मिकवादी नहीं हैं, जो आध्यात्मवादी हैं वो तो सदा ही आध्यात्मिक कर्म करते हैं। अध्यात्म कर्म चाखिलम, अखिल कर्म जो हैं वो आध्यात्मिक होते हैं, कृष्ण की प्रसन्नता के लिए होते हैं। लेकिन जो लोग ऐसे नहीं हैं, जो लोग भोग करना चाहते हैं जगत में, उन लोगों के लिए यहाँ पर प्रभुपाद समझा रहे हैं कि उनको इस प्रकार से यज्ञ करना चाहिए जिसके द्वारा, जिसके बारे में आगे भी चर्चा होगी, जिससे उनका शुद्धिकरण हो सके और फिर वो योगियों के स्तर पर आ सकें। अंततो गत्वा, कर्म के अनेक भेद होते हैं। जो लोग कृष्ण भावना भावित नहीं हैं वे निश्चित ही विषय पराण होते हैं, अतः उन्हें पुण्य कर्म करने की आवश्यकता होती है। मतलब जो कृष्ण भावना भावित है वो केवल भक्ति करना चाहता है, उसे पाप और पुण्य से कोई इंटरेस्ट नहीं होता। पाप तो वो ऐसे भी नहीं करते और पुण्य में भी इंटरेस्ट नहीं होता, क्योंकि जानते हैं पुण्य को भोग करने के लिए भी इसको अगला शरीर यहाँ पे धारण करना पड़ेगा, जो कि जगत अच्छा नहीं है। तो यहाँ ये बोल रहे हैं कि जो लोग विषय भोग चाहते हैं, आगे का जीवन अच्छा चाहते हैं, तो उनके लिए पुण्य करना परम आवश्यक है ताकि अच्छे भोग आगे उनको प्राप्त हों, ये उनको पता रहता है। यज्ञ पद्धति इस प्रकार सुनियोजित है कि विषयोन्मुख लोग विषयों के फल में फंसे बिना अपनी इच्छाओं की पूर्ति कर सकते हैं। संसार की संपन्नता हमारे प्रयासों पर नहीं अपितु परमेश्वर की पृष्ठभूमि योजना पर निर्भर है, जिसे देवता संपादित करते हैं। कहने का अर्थ यह है, इसको समझिएगा बात को, जो लोग विषयों में बहुत फंसे हुए हैं, फलों में बहुत आसक्त हैं, वो लोग यज्ञ की प्रक्रिया के द्वारा फल भी प्राप्त कर लेते हैं या उनको अपना भोग भी मिल जाते हैं और उनकी दुर्गति भी नहीं होती, उनकी चेतना का दूषण भी नहीं होता है। और दूसरी बात क्या है, संसार की संपन्नता केवल बड़ी बड़ी बिल्डिंग नहीं है। एक्चुअली संपन्नता क्या है, अच्छा खाने को मिले, अच्छी वायु मिले, पानी मिले, शरीर स्वस्थ रहे और जो शरीर के लिए जो आवश्यक भोग हैं वो समुचित मात्रा में मिल जाए, और इन सब के लिए हमें भगवान के ऊपर निर्भर करना पड़ता है। आहार निद्रा भय मैथुन के लिए हम पूरी तरह से भगवान के ऊपर निर्भर हैं, अपनी शक्ति से हम इन चारों को एकत्रित नहीं कर सकते हैं, इस बात पर विचार कीजिएगा। तो जो व्यक्ति इस प्रकार से यज्ञमय जीवन जीता है तो सारे देवता उसे प्रसन्न होकर के इसकी भौतिक इच्छाओं को पूर्ण कर देते हैं। अतः वेदों में वर्णित देवताओं को लक्षित करके यज्ञ किए जाते हैं अप्रत्यक्ष रूप में, यानी कि देवताओं को लक्षित किए जाते हैं अर्थात वो टैक्स जो भगवान की गवर्नमेंट है उसको टैक्स मिल जाता है, सारे देवता उसको फिर उस व्यक्ति को जीवन में भौतिक आवश्यकताएं सुचारू रूप से देते रहते हैं अप्रत्यक्ष रूप में यह कृष्ण भावनामृत का ही अभ्यास रहता है, क्योंकि जब कोई इन यज्ञों में दक्षता प्राप्त कर लेता है तो वह अवश्य ही कृष्ण भावना भावित हो जाता है। यानी कि यज्ञ करते करते बहुत सारे देवताओं को यज्ञ के लिए यज्ञ करते करते व्यक्ति एक दिन अपनी चेतना के शुद्धिकरण के द्वारा समझ पाएगा कि अरे यज्ञ के जो भोक्ता हैं वो तो भगवान विष्णु हैं और उनको सीधे मैं भक्ति के द्वारा प्रसन्न कर सकता हूँ, तो यज्ञ करने की क्या आवश्यकता है अलग से। किंतु यदि ऐसे यज्ञ करने से कोई कृष्ण भावना भावित नहीं हो पाता तो उसे इसे एक कोरी आचार संहिता समझना चाहिए। अतः मनुष्यों को चाहिए कि वे आचार संहिता तक ही अपनी प्रगति की इसको सीमित ना करें अपितु उसे पार करके कृष्ण भावना मृत को प्राप्त हों। यानी कि यज्ञ करने का उद्देश्य है कि व्यक्ति कृष्ण भावना भावित हो, और अगर व्यक्ति नहीं करता है, उस भक्ति के स्तर पर नहीं आ पा रहा है, तो उसने केवल नियमों का पालन किया है, नियमाग्रह किया है और रियली यज्ञ करने का उसको लाभ पूरा प्राप्त नहीं हुआ है। अब कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनके लिए इस प्रकार के यज्ञ कार्य नहीं होते हैं, करना आवश्यक नहीं होता है, उसकी चर्चा हम आगे करेंगे। हरे कृष्णा।